नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और चिट्टगांव में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के हजारों लोगों ने सुरक्षा की मांग को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री आज नेपाल के दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय अभियान 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ समाप्त। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में अभिनव बिंद्रा को सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। इस दौरान श्री मोदी किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
श्री मोदी 61 फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे, जिनमें 34 खेती और 27 बागवानी फसलें हैं। खेती की फसलों में बाजरा, चारा, तिलहन, दाल, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य फसलों सहित विभिन्न अनाजों के बीज जारी किए जाएंगे। बागवानी फसलों में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, वृक्षारोपण, कंद, मसाले, फूल और औषधीय पौधे शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने सदैव समावेशी खेती और जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी आदि कई सरकारी कार्यक्रमों से जोड़कर फसलों की जैव सशक्त किस्मों को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उठाए गए इन कदमों से किसानों की अच्छी आय सुनिश्चित होगी और उनके लिए उद्यमिता के नए अवसर प्राप्त होंगे। उच्च उपज वाली इन किस्मों को जारी करना इस दिशा में एक और कदम है। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गन्ने के अलावा मक्का, टूटे चावल, फलों के छिलकों और बांस के एथेनॉल उत्पाद के लिए बहुआयामी और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में कल एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि एथेनॉल उत्पादन लाभदायक और व्यवहारिक व्यवस्था है। श्री शाह ने कहा कि सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की सीमा बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की स्थापना की गई है। इससे एथेनॉल निर्यात के अवसर पैदा होंगे और सीधे तौर पर किसानों को लाभ होगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और चिट्टगांव में कल अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के हजारों लोगों ने लगातार दूसरे दिन जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट।
प्रदर्शनकारी देश भर में चरमपंथियों के उपद्रव और हिंदुओं के घरों, व्यवसायों और मंदिरों पर हमले से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी अल्पसंख्यकों पर हमले के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए विशेष ट्रिब्यूनल बनाने, संसद में 10% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए आवंटित करने और अल्पसंख्यक संरक्षण कानून बनाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अल्पसंख्यकों का साथ दिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना के त्यागपत्र के बाद से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को हिंसा और उपद्रव का सामना करना पड़ा है। हिंदू समुदाय के कई मंदिरों, घरों और व्यावसायिक ठिकानों में तोड़फोड़ की गई है। उधर भारतीय मूल के अमरीकी सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर संसद में बहस की मांग की है। समाचार कक्ष से कुमार राधारमन।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। कल तिमोर लेस्ते में राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। दोनों देशों ने आपसी सहयोग पर तीन समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपसी संबंधों को सुदृढ़ करने पर भी बल दिया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि सरकार भारत और मालदीव तथा क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए मालदीव के साथ घनिष्ठ संबंधों के प्रति वचनबद्ध है। डॉ जयशंकर तीन दिन की मालदीव यात्रा पर हैं। उन्होंने राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मोइजू और रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा सुरक्षा संबंधी सहयोग, समुद्री सुरक्षा के लिए संयुक्त प्रयासों और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए साझा हितों के बारे में चर्चा हुई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री आज से दो दिन की नेपाल यात्रा पर जा रहे हैं। नेपाल के विदेश सचिव सेवा लम्सान के निमंत्रण पर श्री मिश्री ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय संपर्क का हिस्सा है। भारत अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत नेपाल के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है। दोनों देशों के बीच सदियों पुराना सभ्यगत सांस्कृतिक संबंध और द्विपक्षीय सहयोग हाल के वर्षों में और सुदृढ़ हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
माँ, आज स्कूल में हमें दस्त से बचने का तरीका सिखाया गया।
अच्छा, क्या सिखाया गुड़िया?
खाना बनाने से पहले और शौचालय या मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोना, हमेशा साफ पानी का उपयोग करना और रोटा वायरस और खसरी का टीका सही समय पर लगवाना।
वाह, तू तो बड़ी सयानी हो गई है।
आखिर आपकी ही तो बेटी हूँ।
अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूस्खलन से गंभीर रूप से प्रभावित केरल के वायनाड को पूर्ण सहायता देने का वादा किया है। श्री मोदी ने आपदा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वायनाड में भूस्खलन ने सभी को आहत किया है। उन्होंने कहा कि त्रासदी के बाद से वो स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और केंद्र सरकार ने प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री ने कल प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया था। श्री मोदी पीड़ित परिवारों से मिले, राहत शिविरों का दौरा किया और घायलों से बातचीत की। उन्होंने वादा किया कि केरल सरकार से स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलने के बाद केंद्र सरकार प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों और घरों सहित आवश्यक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक रिपोर्ट लोकसभा को सौंपेगी। श्री रिजिजू ने कहा कि न केवल मुस्लिम बल्कि कोई भी संगठन और व्यक्ति जो सकारात्मक तरीके से योगदान देने में रुचि रखता है, जेपीसी की कार्यप्रणाली के दौरान भाग लेने के लिए उसका स्वागत है। उन्होंने कहा कि इसके सुचारू संचालन के लिए जेपीसी को सभी सहायता प्रदान की जाएगी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया है। अमरीकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का आरोप है कि दोनों के पास अदानी समूह से जुड़ी ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी है। श्री बुच ने कहा कि उनका जीवन और आय पहले से ही सार्वजनिक है और सेबी को हर जरूरी दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। माधवीपुरी की सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 2017 में नियुक्ति की गई थी और उन्हें अप्रैल 2022 में सेबी का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रधानमंत्री आदिवासी जनमत महाअभियान में विशेषकर पिछड़े आदिवासी परिवारों के लिए पक्के मकान बनाने में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मध्य प्रदेश ने देश की पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी शिवपुरी जिले में बनाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान शुरू करने के 23 दिन के भीतर ही शिवपुरी में पहला आवास बन गया था। देश में सबसे पहले पीएम जनमन आवास भी शिवपुरी ब्लॉक की कलोथरा पंचायत के भागचंद्र आदिवासी को मिला था। मध्य प्रदेश में कुल 1,13,433 जनमन आवास स्वीकृत हुए थे। इनमें से 22,619 आवास बनाकर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सबसे ज्यादा 4,443 आवास बने हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
उत्तर प्रदेश में भाजपा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज से पूरे राज्य में तिरंगा यात्रा आयोजित कर रही है। मंगलवार को संपन्न होने वाली यह यात्रा देशभक्ति का संदेश फैलाते हुए राज्य के विभिन्न शहरों से गुजरेगी। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का कल हरियाणा के गुरुग्राम में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार आज दिल्ली में किया जाएगा। उन्हें वर्ष 1984 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। श्री सिंह ने कई पुस्तक भी लिखी हैं। मौसम विभाग ने 16 अगस्त तक देश के पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर, पूर्वी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना जताई गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरल और माही में मंगलवार तक भारी बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली में कल 34 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
और अब खेल खबरों के साथ हैं महेंद्र सिंह लालस।
आज शाम एक भव्य समापन समारोह के साथ ही ओलंपिक खेल पेरिस को धन्यवाद कह अपनी लॉस एंजलिस की यात्रा प्रारंभ करेंगे। 33वें ओलंपिक खेल तो खत्म हो गए, लेकिन इन खेलों के जरिए बनी कितनी ही कहानियां आने वाले समय में दुनिया के कोने कूचे में बिखर जाएंगी। ऐसी एक कहानी पेरिस में कल देखने को मिली केन्या के महान धावक इलियुड किपचोगे की। किपचोगे वे एथलीट हैं जिन्होंने सबसे पहले लगभग 2 घंटों में मैराथन दौड़ ली थी और जिनके पास रियो और टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक भी थे, मगर वे अपनी आखिरी ओलंपिक मैराथन दौड़ पूरी नहीं कर सके। कोई 30 किलोमीटर दौड़ने के बाद किपचोगे थक गए और उनके बदन ने आगे दौड़ने से इनकार कर दिया। ये उनके कैरियर का पहला मौका था जब वे मैराथन को पूरा नहीं कर पाए। भारत का पेरिस ओलंपिक खेलों का सफर कल खत्म हो गया जब गोल्फ में महिला वर्ग में अदिति अशोक 29वें और दीक्षा डागर 49वें स्थान पर रहे। महिलाओं के 76 किलो फ्रीस्टाइल कुश्ती में रितिका हुड्डा अपना बाउट किर्गिज पहलवान आईपेरी मेडेट से हारकर पदक की कुश्ती से बाहर हो गयी। इन ओलंपिक खेलों में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं और उसका पदक तालिका में स्थान 71वां। कुछ मुकाबले आज होंगे, लेकिन कल तक चीन 39 स्वर्ण 27 रजत और 24 कांस्य यानी कुल 90 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ था। उसके ठीक पीछे है संयुक्त राज्य अमेरिका जिसके खिलाड़ियों ने जीते हैं 38 स्वर्ण और 42 रजत और इतने ही कांस्य।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कल पेरिस में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया। ये पुरस्कार ओलंपिक में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अभिनव ने वर्ष 2008 में पेचिंग ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक में खेल मध्यस्थता अदालत ने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला मंगलवार रात 9:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। वरिष्ठ वकील हरीश सालवे इस मामले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सुनवाई पूरी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आयोजित सांस्कृतिक उत्सव कशूर रिवाज में 10,000 युवतियों ने कश्मीरी लोक नृत्य प्रस्तुत कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने अपना नाम यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम में दर्ज करा लिया है। ये लोक नृत्य 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रस्तुत किया गया। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद लवली। केरल के वायनाड में भूस्खलन ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आश्वासन कि वायनाड को राहत और पुनर्वास में हर संभव मदद दी जाएगी, राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों में है। हरिभूमि लिखता है, पैदल ही मलबे में चले प्रधानमंत्री, भावुक होकर कहा भूस्खलन से टूटे हजारों परिवार के सपने। उन्होंने कहा कि सरकार उनके साथ है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का ये बयान कि सपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया, नवभारत टाइम्स में है। पत्र के अनुसार मालदीव में यूपीआई पेमेंट सेवा होगी शुरू। अमर उजाला ने इस चिंताजनक खबर को दिया है कि जलवायु परिवर्तन से विनाशकारी पथ पर बढ़ रही है पृथ्वी। पत्र कहता है वर्ष 2030 तक 45% तक टिपिंग के भारी खतरों की जद में होगी पृथ्वी। पत्र ने समझाया है कि टिपिंग प्वाइंट एक महत्वपूर्ण सीमा है जिसे पार करने पर जलवायु प्रणाली में बड़े और त्वरित परिवर्तन होते हैं। पेरिस ओलंपिक के आजाद होने वाले समापन की खबरें भी सभी अखबारों में हैं। दैनिक भास्कर कहता है पिछली बार से 1 मेडल कम पर 11 खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और चिटागांव में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के हजारों लोगों ने सुरक्षा की मांग को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री आज नेपाल की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। सभी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय अभियान 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक के साथ सम्पन्न। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।